लन यदुर्रुकुम इल्ला अदा, जब आप जाहिर है तन्हाउना अनिल मुनकर करोगे तो उनको बुरा लगेगा, तो फिर ये ना सोचना कि हाय ये हमें कुछ नुकसान ना दे दे, लन यदुर्रुकुम इल्ला अदा, अगर आप ये काम कर रहे हो तो वो आपको कोई नुकसान नहीं दे सकते मगर अजियत। मगर असियत क्या है, कोई साजिशें करेंगे, कोई प्रोपोगेंडा करेंगे। अगर उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो यहूदियों ने क्या किया, थ्रू आउट वो सामने आके नहीं लड़ सके, कभी नहीं सामने आके लड़े, कभी उन्होंने दूबदू जंग नहीं की, बस साजिशें अंदर अंदर से, बस कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा करते रहना, कोई अफवाहें फैलाते रहना, कोई सर, तो वो यही करते रहेंगे। और आज भी देखे ना, कभी कार्टून बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई, तो यानी नागवारी की चीजें करते रहेंगे। वा युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार, अगर वो कभी सामने आते भी हैं तो फिर भी जंग करने के लिए आमादा हो ही जाते हैं, अव्वल तो जंग करने के लिए कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो पीठ फेर जाएंगे, तुम मलायों पर उनको नहीं मदद दिए जाएंगे। अब ये बात कही गई, अब ये समझ आप देखें, एक इंपॉर्टेंट आयत यहाँ पे आ रही है, जिसकी जैसी आयत हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं, और आप अब बताएंगे कि क्यों ये आयत यहाँ पे आई। दुरी बता ले ही मुजिल्लत, इनके ऊपर मार दी गई जिल्लत, ये यहूदियों की बात हो रही है असल में ना, कि इनके ऊपर जिल्लत थोप दी गई, जिल्लत यानी कमजोरी, जोफ, अइनमा सुकिफू, जहां कहीं भी वो पाए गए इनके ऊपर ये थोप दी गई, इल्ला भी हबलिन मिन अल्लाह व हबलिन मिन अन्नास, हाँ इनका इस जिल्लत से, इस कमजोरी, इस पसपाई से निकलने का, सर्वाइवल का सिर्फ दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं इनके बचाव के, दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, या फिर ये लोगों की रस्सी को थाम ले, लोगों के साथ ताल्लुक सही कर ले, लोगों के साथ यानी अल्लाह की रस्सी को थाम ले का मतलब क्या है, अल्लाह की रस्सी के साथ ताल्लुक क्या है, यानी या तो मुसलमान हो जाए, अपने दीन के ऊपर कारबंद आज हुए हैं तो देखो काफी इनका सर्वाइवल हुआ है, या फिर ये लोगों के साथ ताल्लुकात को सही कर ले, यानी लोगों के साथ मुआहिदे कर लें, किसी की छतर छाऊं में आ जाए, किसी के शेल्टर, किसी का शेल्टर ले लें, और उसका शेल्टर लेकर यानी खुद नहीं ये खड़े हो सकेंगे कभी भी दुनिया में इंडिपेंडेंट होके, मगर किसी के बलबूते के ऊपर, लोगों के, और लोगों में आज देख लें आज बड़ी ताकतें हैं, वेस्ट के ईसाइयों के बलबूते के ऊपर आज ये खड़े में हैं, आज इनका सर्वाइवल इसी सूरत में है, इनके मुल्क का सर्वाइवल के इन्होंने, वेस्ट ने इनको अपनी गोद में लिया हुआ, आज वो अपना हाथ उठा हटा दें इनसे तो ये खत्म है, तो ये किसी के सहारे कभी भी खड़े होंगे तो किसी के सहारे होंगे। वबा उबे गौदा भी मिनल, अब ये पहली देखें, एक बात बता दी कि अल्लाह ने इनके ऊपर क्या थोपी, जिल्लत, अइना मा सुकिफू, जहां कहीं चले जाएं, जिस इलाके में चले जाएं, जिस मुल्क में चले जाएं, यानी तितर बितर दुनिया में बिखरे पड़े होंगे, जिधर भी जाएंगे इनके लिए जिल्लत ही जिल्लत होगी। नंबर टू क्या होगा, वबा उबे गौदा भी मिनल, वो लौटे साथ अल्लाह के गजब के, इनके ऊपर अल्लाह का गजब, ठीक है, अल्लाह का गुस्सा इनके ऊपर, मग़दूबी अलैहिम, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि यहूद है मग़दूबी अलैहिम, क्योंकि ये दलील है इसकी, जब हम सूरह फातिहा में कहते हैं मग़दूबी अलैहिम तो वो कौन है, वैसे तो जिसके ऊपर भी अल्लाह का गजब हुआ, लेकिन एक उनमें यहूदी भी है, अल्लाह के गजब के साथ ये लौटे, व दुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और इनके ऊपर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई, मार दी गई मोहताजी इनके ऊपर। मस्कना क्या होता है कि यानी एक आदमी चाहे देखने के अंदर कितना भी ताकतवर बड़ा नजर आ रहा है कि उसके अंदर बड़ी ताकत है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, कम हिम्मती, अंदर से बुजदिली, तो ये मस्कनत है, वो इनको पर मार दी गई। अच्छा, जालिका, ये किस वजह से है, क्या क्यों ये इनके साथ ऐसा हुआ, क्यों, क्या इनका कसूर था, ये आपका सूर बताए जा रहे हैं। तीन पहले इनकी सजाएं बताई गई, जिल्लत दुनिया में जहां कहीं जाएंगे, और वो एक्सेप्शंस दो बता दी गई इल्ला के बाद, या तो ये कर लें या ये कर लें। वबाउ बिगदबी मिन अल्लाह, अल्लाह का गजब और मस्कनत, ठीक है, ज़ालिका ये क्यों, भी अन्नहुम कानू यकफुरून बि आयात अल्लाह, ये अल्लाह की आयात की नाकदरी करते थे, क्या वो अल्लाह की आयात को नहीं मानते थे, तौरात को मानते तो थे, क्या नहीं मानते थे बताएं, तौरात को मानते थे, तौरात को पढ़ते भी थे, तो फिर क्या मसला था, यानी उनके कोई वैल्यू नहीं थी अल्लाह की आयात की, कुछ उनको नहीं समझते थे, ठीक है, कोई उनके ऊपर अमल नहीं था। अल्लाह की आयात का इनकार ये भी है कि उनको छोड़ देना, उनको अमल के काबिल ना समझना, अमली जिंदगी में उनको नाफिज ना करना। अब वो मैंने कुरान के हकूक में क्या बताया, सिर्फ ये हक नहीं है हम ईमान ले आते हैं कुरान के ऊपर, हम पढ़ पढ़ के उसको रख रहे हैं, 3 दफा पढ़ लिया, 4 दफा पढ़ लिया, हमने तो इतनी दफा मुकम्मल कर लिया। या सिर्फ सीख लेना नहीं है कि हमने इतने कोर्स कर लिए, बल्कि इसको अमल में लेकर आना। तो ये इनका पहला जुर्म क्या है, कुफर अल्लाह की आयात का, जबकि इनके पास तौरात थी, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी थी, उसको भी नहीं माना, ठीक है ना, और भी जो अहकाम थे उसको नहीं मानते थे। ये इतना बड़ा जुर्म है, सोच लें, हम तो इसको जुर्म ही नहीं समझते थे ना, कि ये भाई कुरान है तो ठीक है, पढ़ने के लिए ही है, तो पढ़ते तो वो भी थे, वयक्तुलून अल अंबिया बिगैर हक, और वो कत्ल करते थे नबियों को ना हक, नबी बेचारे उनको क्या कहते थे, यही कहते थे ना कि ये नहीं करो, गलत बातों से रोकते थे, नबियों का पहला फरीजा ही ये था, अमर बिल मारूंगा नहीं ना मुनकर, सबसे बड़ा मुनकर शिर्क था, शिर्क से रोकना, या अल्लाह की नाफरमानियों से रोकते थे, तो अल्लाह की नाफरमानियों से रोकना इनको इतना नापसंद आता था, ये उनको ही रास्ते से हटा देते थे। जैसे आज हमारे अंदर कोई बंदा खड़ा हो जाए और वो कहे कि ये गलत है, ये नहीं करना, फिर उसके बाद देखना वो गायब ही हो जाएगा, वो मिसिंग पर्सन होगा, वो गया किधर पता ही नहीं चलना, हर जगह पे यही होता है। तो कोई कोई डिफरेंट नहीं है हम उनसे, वो अगर अंबिया को कत्ल करते थे तो आज तो कोई नबी है नहीं, वरना कमी इन्होंने नहीं करनी थी। आप देख लें उलमा को कैसे कत्ल करते हैं, कैसी धमकियां उनको मिलती हैं, कई उलमा को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, दूसरे मुल्कों में उन्होंने आज पनाह ली हुई है, सिर्फ इस वजह से उनको धमकियां इतनी दी जाती थी कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, उनको गैर मुस्लिम मुल्कों में जाके पनाह लेनी पड़ी हमारे उलमा को, ये हाल हो गया, और कईयों को कैद किया हुआ, कईयों को कत्ल ही कर दिया, उनका आज तक नामो निशान ही नहीं पता जी हैं किधर, वो तो वो भी कत्ल करते थे, क्या उनको बुरा लगता था अंबिया में, क्या कहते थे उनको अंबिया, ये बस उनका कसूर था। और ज़ालिका बिमा असौ, इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे, वकानू यातदून, और हद से बढ़ जाने वाले, हद से बढ़ जाते थे, और हद से बढ़ जाना यानी क्या कि बाउंड्रीज अल्लाह की क्रॉस करते थे। अक्सरियत यहूद का हाल यही था कि ये काम करते थे, ये चार काम, और इस वजह से इनके ऊपर ये मुसल्लत की गई, जिल्लत, गजब और मस्कनत। क्यों हम यहां पे क्यों ये आयत आई, इसलिए कि हमें बताया गया, हमें कहा गया तुम्हारा ये काम है, उसके बाद दिखाया गया वो जो पहले थे ना तुम्हारे से पहले जिनको ये काम दिया गया था, सोचें ये वो लोग हैं, ये आम लोग नहीं थे, आप खुद सोचें, मतलब इंसान दंग रह जाता है, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ने जहान वालों पे फजीलत दी, जहान वालों पे सब में तुम्हें बेस्ट बनाया, सूरह बकरा में आप पढ़ चुके हैं, नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, पढ़ा है ना आपने, ये वो लोग थे जिनके लिए अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़ के रख दिया, उसमें रास्ता निकाल दिया, ये वो लोग थे जिनकी आंखों के सामने उनके दुश्मन को गर्क करके दिखाया, ये वो लोग थे जिनके लिए एक आसा मारने पे 12 चश्मे फूट गए, ये वो लोग थे जिनके लिए मनो सलवा अल्लाह ने आसमान से उतारा, ये वो लोग थे जिनके लिए अल्लाह ने बादलों का साया 40 साल तक किए रखा, कि ये जहां जाते थे बादल इनके ऊपर साया किए रखते थे, ये वो लोग थे, और इन लोगों के ऊपर जिल्लत, इन लोगों पे मस्कनत, इन लोगों पे अल्लाह का गजब, ये कैसे पहुंचे इस तक, क्यों पहुंच गए इतना डाउनफॉल, ये हालत अल्लाह ताला ने हमें दिखाया है, कि ये ना समझना, आता ना कौन सी सूरह में आता है, मुझे भूल गया, शायद सूरह तौबा में आता है, अल्लाह ताला ने उन काफरों से फरमाया है कि तुम ये ना समझना, ये तुम बड़े, तुम्हारे से पहले काफरों को तो ये सजाएं मिली और तुम मुशरिकीन ने मक्का, तुम तो बड़े चहीते हो तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, नहीं, जो भी ये काम करेगा उसके साथ यही है, तो तुम ये ना समझना उम्मत मुस्लिमा कि तुम बड़ी चहीती हो तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं है, तुम चाहे उन्हीं के जैसे काम करते रहो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके साथ ये हुई तो तुम्हारे साथ भी हो सकती। दिस इज द रीजन आज आप दुनिया में जिल्लत पसपाई, और पता चल रहा है अल्लाह का गजब आया हुआ इनके ऊपर। जिधर देखो मार पड़ रही है, जिधर देखो जलील हो रहे हैं, जिधर देखो ख्वारी है, मस्कनत है, वहां उनकी बीमारी लग चुकी है। दुनिया से मोहब्बत और मौत का खौफ, मस्कनत है, क्या हाल हो चुका है। ये तुम्हारे भी यही करतूत है। तुमने अमर बिल मारू व नहीं अनिल मुनकर छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ा था तो उनकी ये हालत हो गई थी। ये होने लगे तो कोई रोकने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। अंबिया को कत्ल करते थे, एक एक दिन में कई अंबिया को कत्ल कर देते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अल्लाह की नाफरमानियां खुलेआम करते थे। आज क्या मुसलमानों में नहीं ये बीमारियां पाई जाती? तो फिर वो कैसे जिल्लत और मस्कनत से बच सकती है? अगर वो कौम, वो उम्मत ये काम करके जिल्लत और मस्कनत और गजब के अंदर मुब्तला हुई, तो उम्मत मुस्लिमा तुम कैसे यही काम करके इज्जतें पा सकते हो? ये बताओ, ये बताओ। तो समझ आ रही है बात के नहीं आ रही? देखें, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, और आपके पर बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद उससे नहीं है जो औरत इस वक्त कोई पढ़ाई नहीं कर रही, कुछ उसको समझ नहीं, बस हांडी रोटी करती है, शॉपिंग करती है और बस सो जाती है। उससे नहीं उम्मीदें, आपसे उम्मीदें। आप कुरान की तालिबे-ए-इल्म हैं, आप लोगों को अब खड़े होना है। ये उम्मत बदलेगी नहीं ऐसे, ये किसी बदलने के लिए फरिश्तों ने नहीं आना, ना उससे मुतालबा है जो कोई पढ़ ही नहीं रहा, जिसको कोई समझ ही नहीं है। उससे क्या हम पूछें और उससे हम क्या कहें? मुतालबा उनसे है जो कुरान के तालिबे इल्म है, जिनको समझ आ रही है, जिनकी आंखें खुल रही हैं, जो जाग रहे हैं कि हमारे पर मुसीबत पड़ी क्यों हुई है, हमारे पर ये मसले आए क्यों हैं। आपको अब सोच आ रही है, आप अब होश पा रहे हैं, आप जाग रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों को भी जगाना है और इन कामों से निकालना है, वरना जिल्लत हमसे नहीं हट सकती, वरना इसी तरह हम दुआएं करते रहेंगे और वो कबूल नहीं होंगी, वरना हम रोएंगे, फरियादें करेंगे, रातों को आंसू बहाएंगे, नहीं दुआएं कबूल होंगी। फरमाया उनके नेक लोग दुआएं करेंगे और दुआएं कबूल नहीं होंगी। हरम में दुआएं होती हैं, नहीं कबूल हो रहे, नजर नहीं आता हमें, क्या हम सो गए हैं, क्या कुछ समझ नहीं आता कि क्यों ये हो रहा है हमारे साथ? कुरान पढ़ो, आपको जवाब मिल जाएगा। ये इनके करतूत, उन्होंने छोड़ दिया अमर बिल मारू व नहीं अनिल मुनकर, अल्लाह ने उनसे ये छोड़ लेके और फिर देखो तुम्हें दिए, तुमने भी छोड़ दिया। तुम्हें ये दिखाया जा रहा है तारीख से कि देखो इनके साथ क्या हालात हुए। मैं आपको बताऊं तो 1 AD में ईसा अलैहि सलाम के आने के बाद और उनके जाने के बाद, उठने के बाद, रूमियों के हाथों इनकी इतनी तबाही हुई थी, और एक दफा नहीं हुई, फिर 2 AD में फलस्तीन में मुकम्मल तौर पे इनको निकाल दिया गया, जिला वतन कर दिया गया था। ये तो 2000 साल के बाद, अब 1948 में देखें इनको एक जगह मिली है। 2000 साल तक ये दुनिया के अंदर इतने ख्वार हुए, इंग्लैंड में रहते थे, वहां पे जिला वतन है। वेस्ट में तो इनको ऐसे समझा जाता था जैसे ये अछूत है, जैसे हिंदुओं के अंदर शूद्रा होते ना, इस तरह इनकी अलग कॉलोनीज होती थी। इनको कोई कुछ समझता नहीं था, इनको बिल्कुल लो ग्रेड समझा जाता था। फिर स्पेन से इनको इतना ऐसे इनको कहा गया कि या तो आप ईसाइयत इख्तियार कर लो या फिर आप यहां से निकल जाओ। फिर उसके बाद आप देखिए 1933 में हॉलोकॉस्ट हुआ, हिटलर ने कितना मारा इनको। 1942 में भी जिन जिन कैंप्स में थी ये थे, वहां से इनको निकाला गया, कत्ल किया गया, दर बदर की इन्होंने ठोकरें खाई। क्यों नहीं समझते इस बात को? वो मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें समझ नहीं आती? ये है हमारी जिल्लत का आज ये रीजन, ये है वजह। वो देखो उनको कितनी मार पड़ी है, कितनी मार पड़ी है उनको, मुसलमानों तुम्हें भी आज पड़ रही है। क्या इससे भी ज्यादा वर्स की तरफ जाना चाहते हो? क्या इससे भी ज्यादा वर्स पे एंड अप होना चाहते हो? तुम्हें अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बनाया, तुम्हें वो काम दिया जो नबी किया करते थे, अमर बिल मारूफ व नहीं मुनकर का, और तुमने इसको कुछ समझा नहीं। तुम इसलिए नहीं दुनिया में आए कि बिल्डिंगें बनाओ, ब्रिज बनाओ, बस जॉबें करो। नहीं, ठीक है, वो आपकी जरूरत है, आप जॉब भी करेंगे, आप बिजनेस भी करेंगे, आप घर भी संभाल लेंगे, लेकिन ये तुम्हारा मकसद नहीं है दुनिया में आने का। मकसद तो तुम्हारा कुछ और था, तुमने अपनी जरूरत को अपना मकसद बना लिया। आज किसी को इसका पता ही नहीं है कि ये हमारा काम है, इसके लिए हम उम्मत मुस्लिम फखर करने को जिसको मर्जी खड़ा कर लो, देखना तकरीरें कितनी करा लो आप कि हम तो वो उम्मत है जो ऐसे है, हम तो वो उम्मत है जिसका ये है वो है, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। भाई उसके बाद तुमने किया क्या ये बताओ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं ऐसे ही लोगों के बारे में तो वईदें सुनाई हैं कि जो अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर नहीं करें वो तो ये हैं, वो तो हम में से है ही नहीं है। तुम क्या खड़े होकर कहते हो कि हम तो उनकी उम्मत, तो हम तो ऐसे, वो जमीन आसमान के कलाबे मिलवा लो। तो इस बात को समझे, फिर 1948 में वर्ल्ड वॉर के बाद इनको ये जगह मिली है, और वो भी इसलिए हबले मिनन नास। और आज जो हम देख रहे हैं ना कि थोड़ा बहुत जो इनका थोड़ा एक वो है, वो भी इसलिए कि दूसरी हुकूमतों ने इनके सर पे हाथ रखा हुआ। और ये आप कभी सोचते नहीं है कि 2000 साल से ईसा अलैहि सलाम के बाद से इनको निकाला गया, ये अब आके कैसे इनको एक मिल गया एक जगह, और ये कैसे वो गए 2000 साल इनको मार पड़ती रही है। देखें इन्होंने अपना ताल्लुक अल्लाह से भी मजबूत किया, ठीक है मुसलमान नहीं हुए लेकिन अपने दीन पे कुछ, आज भी आप देखें तो सबसे ज्यादा ये, एक दफा एक न्यूज आई थी कि जहाज ने टेक ऑफ करना था और इनकी नमाज का टाइम हो गया तो ये खड़े हो गए जहाज के अंदर ही, और इन्होंने वो जहाज पूरी न्यूज थी, इनकी पिक्चर्स थी, सारे खड़े हुए थे कि नहीं हमने अपनी तो प्रे करना है हमने। इन्होंने अल्लाह से भी ताल्लुक मजबूत किया, इन्होंने लोगों को भी साथ लगाया, ऐसी कुव्वतों को साथ लगाया जो दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का कुरान सच्चा है इसलिए आज इनको ये मिली है। और ये एंड ऑफ टाइम है, इसलिए एंड ऑफ टाइम है, और एंड ऑफ टाइम पे इनके पास गलबा आएगा एक दफा, शम्मा बुझने से पहले जो ना बड़ा फड़फड़ाती है, तो ये है इनका वजह। वरना आप सोच लें कि जो 2000 साल से नहीं खड़े हो सके वो आज खड़े हुए, आज इन्होंने हिब्रू जुबान को जिंदा किया, आज इन्होंने पूरी दुनिया से अपने, चाहे काला है चाहे गोरा है जो मर्जी यहूदी है वो वहां का सिटीजन है उनके मुल्क का, वो जब मर्जी आए जब मर्जी जैसे मर्जी वो, यानी उन्होंने इतना अपने रिवाइवल की कोशिश किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की। अब तो मुसलमानों अगर जिल्लत से निकलना है तो इन कामों को छोड़ना पड़ेगा, जो अल्लाह ने उनके कसूर बताए हैं वो कसूर तुम्हें अपने अंदर से निकालने होंगे। फिर फरमाए लईसु सवा, मगर इनमें सारे एक जैसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है कि वो कत्ल करते और वो नाफरमानी करते और वो हद से गुजर जाते थे। ये लईसु सवा में 3 किस्म के लोग हैं, एक तो अपने जमाने में यानी जो उनके जमाने में भी लोग थे उनमें सारे ऐसे नहीं थे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कुरान का इंसाफ है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये अब्दुल्ला बिन सलाम, और मैंने आपको बताया ये कुछ और सालबा और असद और ये सारे ये जो थे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ यहूदी थे मुसलमान हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया सारे ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो मुसलमान हुए हैं जिन्होंने ये काम नहीं किए कि भाई हठधर्मी करें और अल्लाह की आयात का कुफर करें, वो मुसलमान हो गए। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं। और तीसरी ये कि सारे ऐसे नहीं है, फ्यूचर में भी कई लोग ऐसे होंगे जो इनके जैसे नहीं होंगे और वो इस्लाम ले आएंगे, तो सारे बराबर नहीं है। खाल खाल लोग अच्छे भी होते हैं हर जगह पे, अगर अक्सरियत फासिक है तो इनमें भी कैसे हैं, मिन अहलिल किताब। अच्छा इससे ना इस आयत के एंड में उलाइका मिन सालिहीन, ये हैं जो नेक लोग हैं साले लोग हैं, इसका मतलब यहूद नसारा में भी साले लोग पहले जमाने में मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मौजूद थे साले लोग वो लोग मुसलमान हो गए, ठीक है, और आइंदा भी जमानों में कोई साले लोग होंगे वो मुसलमान हो जाएंगे, वो हक को देख के पहचान लेंगे, वो नहीं अपनी आयात का कुफर करेंगे कि भाई हम नहीं मानते। अच्छा और ये हमें भी पता चलेगा यहाँ से कि जिसने साले बनना है वो कैसे साले बन सकते हैं, अल्लाह ने इनको सालेहीन कहा तो इनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से उम्मतुन कायमतुन, एक जमात है जो कायम रहने वाली, जो हक पे रहने वाली है, इस्तकामत इख्तियार करने वाली है, अल्लाह के दीन पे जम के रहने वाली है। उनको ये नहीं है कि मैंने यहूदी रहना है या मेरे उसमें से क्यों नहीं कोई नबी आया हमारी बनी इसराइल में से, वो जो हक है वो हक को मानते हैं और उसके ऊपर जम जाते हैं। और उनकी दूसरी क्वालिटी क्या है, यतलून आयात इल्लाही आना अल्लैल, वो रात की घड़ियों में तिलावत करते हैं अल्लाह की आयात की, अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं रात को। अच्छा, अब हमने देखते जाना है कि हम कहाँ खड़े हैं, मेरे अंदर कितनी नेकी आई है। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया ना कि मुशरिकीन ने मक्का से कहा गया कि जो तुम कुफर करते हो तो तुमको ज्यादा चहीते नहीं हो अल्लाह के, और ये ना समझना तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जब पिछले काफरों से अल्लाह ने ये डील किया था तुम्हारे साथ क्यों नहीं। तो वो सूरह कमर की आयत है, सूरह कमर में वो आयत है, ठीक है। तो अब यहां पे बताया गया कि देखो ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं रातों को। रातों को तिलावत करना क्यों ज्यादा हुआ, दिन को भी तो तिलावत की जा सकती है, मैं यहाँ पे रात की बात क्यों। देखिए, रात में तन्हाई है, रात में यकसुई है, रात में इंसान जो फोकस कर सकता है ना वो दिन में नहीं हो सकता, तो रात को तिलावत करने का एक अलग से बात की गई। और आप देखेंगे जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो रात को उससे खामोशी में बात करना चाहता है ताकि कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो जिसका रब्बे कायनात से खास ताल्लुक हो ना, फिर वो अपनी रातों को आबाद करता है तिलावत कुरान से, और जिनका अल्लाह से ताल्लुक नहीं होता फिर उनकी रातें आबाद होती हैं फिल्मों से, गपशप से। वो अल्लाह से गपशप नहीं करते ना, अल्लाह से बात नहीं करते, वो फिर कहीं औरों से बातें करते हैं, जाहिर है। और अल्लाह का कलाम, जाहिर है अल्लाह तआला का कलाम ऐसे है कि जिसको अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह से बात करनी है, वो उसके कलाम को पढ़ ले। जैसे वो ना एक शायरा थी, मुगल शायरा, ज़ेबुन निसा उसका नाम था, तो बड़ी खूबसूरत शायरी करती थी। तो उसका एक बड़ा मद्दाह था, बड़ा फैन था, तो उसने कहा कि मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी कि तुम मेरे कलाम में मुझे ऐसे पा सकते हो जैसे फूल में खुशबू, यानी खुशबू से फूल का अंदाजा हो जाता है ना, और फूल खुशबू से अलग नहीं है। तो किसी ने फूल को ना भी देखा हो तो खुशबू से पता चल जाता है फूल कैसा है। तो इसी तरह किसी का कलाम होता है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम में अल्लाह छुपा हुआ है। अल्लाह ताला को पाना चाहते हो, अल्लाह से मुलाकात चाहते हो, उसको हम देख तो नहीं सकते, फिजिकली तो नहीं उसको मिल सकते, मगर उसके कलाम से जुड़ सकते। तो अल्लाह के कलाम में आप उसको तलाश करें, और रातों में खास तौर पे अल्लाह ताला के कलाम के साथ आप जुड़ जाएं। देखें, हजरत दुर्रा रजीला तला हाँ, अबू लहब की बेटी थी, तो उनसे किसी ने पूछा, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि बेहतरीन शख्स कौन है, यानी बेहतरीन आदमी कौन है। तो वो कहने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मिंबर पे थे, तो आपने जवाब दिया कि सब लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज्यादा कुरान का पढ़ने वाला हो। क्या नंबर वन? सबसे ज्यादा कुरान का पढ़ने वाला हो, सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार, सबसे ज्यादा नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला, और सबसे ज्यादा रिश्तों को मिलाने वाला। पांच बातें हो गई ना, कुरान का कारी, मुत्तकी, नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला, और रिश्ते नाते मिलाने वाला। हम देख लें कि हम में बेस्ट कौन है फिर, बेहतरीन कौन है फिर। और अगर मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ी नेक हूं, तो आप ये क्वालिटीज देख लें, क्या मैं जमी हुई हूँ दीन के ऊपर, क्या मैं रातों को अल्लाह के कुरान की तिलावत करती हूँ। ठीक है ना, आप ये जिसको ना जो महबूब होता है ना, वो उसकी फोटो अपने वॉलेट में रखता है, अपनी प्रोफाइल में लगाता है, अपने फोन के स्टेटस में लगाया होता है, अपने फेसबुक कि जहां मैं खोलूं तो ये नजर आए, है ना, क्योंकि उसके साथ उसको देखना, जब दिल चाहता है कि बस जब मैं इधर उधर हूं कहीं भी मेरा ध्यान हो, मैंने फोन खोला तो वो नजर आ जाए, मैंने वॉलेट खोला तो वो नजर आ जाए, उसको हर वक्त अपने सामने रखना चाहते हैं। जो तो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं वो इसी तरह अल्लाह के लिए होते हैं, उनको दिल चाहता है कि हर तरफ बस अल्लाह की याद हो मेरे साथ, और रात के वक्त जो मेरे स्पेशल मोमेंट्स हैं, जो मेरे तन्हाई के औकात हैं, उनमें खास तौर पे अल्लाह की याद। तो तहज्जुद के बाद उठें और कुरान को पढ़ें, जो याद है उसमें से पढ़ें, नहीं तो देख के पढ़ें। ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह से करीब कर देगी। वहम यसजुदून, और वो सजदा करते हैं, यानी सिर्फ फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, वो नवाफिल, वसजुद वक़्तरिब, अल्लाह से करीब होना है तो सजदे का रास्ता है, अल्लाह से कुर्बत का रास्ता है, और फिर वैसे भी झुके रहते हैं अल्लाह के आगे। सजदा रेज होना ना, सजदा करना अल्लाह के आगे आजी की अलामत है, और इंसान क्यों ना सजदा करे यार उस रब को, जिस रब ने सब कुछ दिया, हर चीज उसने इनायत की, उसके आगे इंसान क्यों ना झुके, उसके आगे क्यों ना सजदे करे। जिसने हमें समझ दी, क्यों ना मैं उसको सजदे करूं, जिसने मुझे अकल दी, क्यों ना मैं उसको सजदे करूं, जिसने मुझे देखने सोचने समझने की सलाहियत दी, क्यों ना मैं उसको सजदे करूं, जिसने मुझे कुरान की नेमत दी, क्यों ना मैं उसको सजदे करूं। तो सजदे, जब इंसान अल्लाह से करीब होता है ना, अल्लाह से मोहब्बत होती है, तो उसका दिल करता है कि मैं उसके आगे झुक जाऊं, बस सजदे, अपने आप को गिरा देना है अल्लाह के आगे, फिर इंसान को सकून मिलता है उनमें। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखरत के दिन पर। और अल्लाह पर ईमान रखना, यानी कामिल ईमान अल्लाह पर है उनका, और आखरत के दिन पर ईमान, यानी ये भी वो ईमान है जो इंसान को सीधा रखता है। आखरत के दिन के ऊपर ईमान होगा तो इंसान की जिंदगी स्ट्रेट होगी, यहां पर कमी आएगी तो फिर आगे मसले होंगे। या असल में तो कमी यही आती है ना, जब ये भूल जाता है, अपनी मौत भूल जाती है, जब कब्र भूल जाती है, जब हशर भूल जाता है, जब जी उठना भूल जाता है, जब आमाल की पेशी भूल जाती है, जब ये भूल जाता है कि मैं कहीं छुप नहीं सकूंगी उस दिन, जब ये भूल जाता है कि वो अंधेरा होगा और उस दिन मुझे नूर चाहिए होगा, ये भूल जाता है, जब मीजान भूल जाता है, जब सवाल जवाब भूल जाता है, जब ये भूल जाता है कि मेरे दाएं हाथ में किताब मिलेगी कि बाएं हाथ में, ये सब भूल जाता है ना, तो फिर इंसान यार जो मर्जी फिर करे, जब ये भूल जाता है कि उस दिन तो इंसान कहेगा अईन अल मफर, कहाँ है भागने की जगह, तो फिर इंसान फिसलता ही है, फिर हर चीज और बड़ी लगती है। देखें, मोमिन और काफिर की नजर का ही तो फर्क होता है ना, काफिर की निगाहों के सामने हमेशा दुनिया रहती है और मोमिन की निगाहों के सामने हमेशा आखरत रहती है। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, देखें इनकी भी क्वालिटी क्या बताई गई, ये नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, यानी उनसे भी रहा नहीं जाता, वो ये काम करते हैं, वो अपने जैसों को भी कहते हैं नहीं ईमान ले आओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, रोकते हैं इस चीज से कि मत तकब्बुर करो, मत हसद करो। वही उसारियूना फिल खैरात, वो फिर बैठे नहीं रहते, या अमरूना बिल मारूफ या नहौना अनिल मुनकर करके, लोगों को तो मैंने नेकी का हुक्म दे दिया बस काफी है, मैं एक लेक्चर दे देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद बस अब मुझे खुद क्या जरूरत है नेकी करने की, मैंने लेक्चर दे दिया बस, मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। नहीं, यू सारी हूं ना फिल खैरात, खुद भी नेकियों में भाग दौड़, और लोगों को लेक्चर देने का काम नहीं है कि हर वक्त बस लोगों को ही कहते रहे तुम ये अच्छा करो, तुम वो बुराई छोड़ दो, खुद की भी फिक्र, यू सारी हूं ना फिल खैरात, और फिर सिर्फ फिक्र नहीं, भागते हैं नेकियों में, भाग दौड़ कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, तेजी दिखा रहे हैं, क्यों, तेजी की क्या जरूरत है, आराम से कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे, अभी इतने काम नहीं है और हमारे पास, अभी पढ़ाइयां करनी है, बच्चे छोटे हैं, फलाने की बात है, जॉबे हैं, इतने काम है अभी हमारे पास, हम नेकियों में भागना शुरू कर दें, ठीक है फिर रमजान आएगा तो कर लेंगे नेकियां भी, और हम करते ही रहते हैं, ऐसी क्या बात है। नहीं, वो ये नहीं कहते, वो किसी नेकी का मौका हाथ से नहीं जाने देते, अपना हिस्सा डालना चाहते, वो ये वेट नहीं करते लोग कर रहे हैं कि नहीं, अगर लोग करेंगे तो हम भी कर लेंगे, अगर लोग नहीं कर रहे तो मुझे भी क्या जरूरत है करने की, कोई पैसे निकालेगा अपनी जेब से और सदका करेगा तो मैं भी हो अच्छा, फिर मैं भी दे देती हूँ, और कोई भी नहीं कर रहा तो मुझे भी नहीं होश है। नहीं, वो यू सर यू ना फिल खैरात है, या आप ये बात समझे कि तेजी सिर्फ वो दिखाता है जिसको ये होता है कि मेरे पास वक्त कम है और मैंने जाना बड़ी दूर है और मुझे बड़ा कुछ चाहिए उस आखरत के लिए, बहुत सामान चाहिए, वो तेजी करता है, फिर वो किसी फील्ड को छोड़ता ही नहीं। जैसे मैंने आपको अबू तलहा की मिसाल बताई थी कि वो बहुत कसरत से रोजे रखते थे, तो लोगों ने कहा आप क्यों कसरत से इतने रोजे रखते हैं, आप इतने कमजोर हो गए, तो क्या फरमाया था, मैं एक लंबे सफर की तैयारी कर रहा हूँ, लंबे सफर की, जिसको ये एहसास हो जाता है ना कि सफर बड़ा लंबा है और उसमें बहुत कुछ चाहिए, वो फिर तेजी दिखाता है। और जिसको ये है कि मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो परसों कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फिर तेजी भी नहीं होती, वो दूसरे कामों में जल्दी करता है। सेल ना खत्म हो जाए, जल्दी करो, खरीद लो, ये जॉब हाथ से ना चली जाए, अभी जो अपॉर्चुनिटी है जल्दी ले लो इसको। वो जल्दी करता है और चीजों में, ये जल्दी करता है नेकियों में, क्योंकि इसको पता है कि ये वक्त हाथ से चला गया तो ये नहीं आएगा वापस, ये जवानी और ये हिम्मत चली गई तो फिर नहीं मिलेगी वापस, इसलिए वो जल्दियां दिखाता है, इसलिए वो तेजियां दिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इससे पहले कि ऐसा बुढ़ापा आ जाए जिसमें सर हिलने लगे, ऐसे हो जाता है ना इंसान का, फिर खुद स्टेबल ही नहीं रहता, या गफलत ही हालत में मौत आ जाए, यानी अल्लाह रहम करे किसी को अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी को अचानक कोई ऐसी बीमारी हो गई, पता ही नहीं चला, आनन फानन ही दुनिया से चला गया, तो या हरकत से रोक देने वाली बीमारी आ जाए कि इंसान बिस्तर पे पड़ गया, उससे उठ के वजू भी नहीं होता, नमाज नहीं पढ़ी जाती, उसने क्या करना, या ना उम्मीद करने वाली ताखीर आ जाए, नेक अमाल कर दे। ये क्या फरमाया, नेक अमाल कर दे। आप इतने खैर हुआ थे ना अपनी उम्मत के, कि देखो हमें पहले से बता दिया, देखो इसका वेट ना करना कि बुढ़ापा आ जाएगा तो कर लूंगा, देखो ऐसा ना हो कि गफलत में ही मौत आ जाए, तो हर वक्त नेकी के लिए दौड़ते रहो, क्या पता है कि आज घर से निकले पता नहीं वापस भी आना है कि नहीं, किसी का पता चला कि वो गोलियां चल रही थी, वो मारना किसी और का था, लग किसी और को गई और चलो वो दुनिया से चला गया, देखो किधर उसकी मौत लिखी हुई थी, क्या क्या उसके साथ हो गया, वो घर से नहीं, उसकी कोई से दुश्मनी नहीं, उसका कुछ नहीं, बस गफलत में मौत आ गई। तो कभी ऐसे भी हो सकता है हरकत से रोक देने वाली बीमारी आ जाए, रोज हम सुनते हैं, उससे पहले जल्दी नेकियां कर लो। इसी तरह फरमाया, फितनों के डर से जल्दी जल्दी नेकियां कर लो, इससे पहले कि ऐसे फितने आ जाए जो इस तुमको इस काम करने के काबिल ही ना रहने दे, हमें क्या पता कल क्या हो जाए। अब देख लें आज अभी ये एक बीमारी आ गई, ठीक है, मस्जिद जाना बंद हो गया, मस्जिद ने जमात से नमाज पढ़ना बंद हो गया, तो क्या हुआ, अब इससे पहले किसी ने सोचा तो नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज आ सकती, इसी तरह हमें नहीं पता और कोई क्या चीज आ जाए, किसी की तीमारदारी करना नामुमकिन हो गया, किसी के घर ताजियत करने जाना नामुमकिन हो गया, जनाजे पढ़ना नामुमकिन हो गया, किसी को तो नहीं खबर थी कि ऐसा कोई फितना आ सकता, ऐसी कोई आजमाइश हमारे ऊपर आ सकती, तो हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाना है, इसलिए इंसान इसको गनीमत जाने जो वक्त उसके पास है, और उसमें तेजी दिखाए नेकियां करने में, तेजी, सुस्ती ना करें, तो हमें नेकी के कामों में सुस्ती नहीं करनी, उसको डिले नहीं करना, उसको टालना नहीं है, कल कर लूंगी परसों कर लूंगी तो क्या हो गया, कर ही लूंगी ना, मैंने कब कहा नहीं करूंगी, नहीं, जो सालेहीन होते हैं ना, जिनका साथ अंबिया ने भी मांगा और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह निसा में आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे खैर से इंशाल्लाह ताला, के जो जन्नतों में जाने वाले हैं और जो अनअमता अलैहिम में शामिल लोग, वो हैं जो अंबिया हैं, सालेहीन हैं, शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, तो उनमें भी सालेहीन का नाम आता है। तो युवा युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालेहीन, यानी ये सालेहों में से हैं, सिर्फ ये साले नहीं है, जो भी ऐसे काम करेंगे वो सब सालेहीन है, और ये भी सालेहीन में से हैं, ऐसी अहले किताब, यानी उनकी भी बात हो रही है जो रिवर्टेड है, लेकिन वो उनकी बैकग्राउंड क्या थी, यहूदी थी, उनकी बात हो रही है, अब मुसलमान हो गए हैं वो, ये सालेहीन में से हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब ये अब्दुल्ला बिन सलाम, और ये सेकंड पॉइंट में शायद मैं ये बताना आपको भूल गई, कि जब ये लोग मुसलमान हुए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, तो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा था कि इनको ना बताइएगा अभी कि मैं मुसलमान हो गया, और ये छुप गए। यहूदी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में तुम क्या कहते, वो कहते वो तो इतना हमारा अच्छा बंदा है, वो तो कभी इस्लाम नहीं ला सकता। फरमाया, पूछा उनसे कि क्या वो अगर इस्लाम ले आए तो कहते नहीं, वो तो कभी नहीं इस्लाम ला सकता। तो इतनी देर में वो निकले और उन्होंने अपना इस्लाम डिक्लेयर कर दिया। जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो इन्होंने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये तो है ऐसा, ये तो वैसा है, ये तो फलां है, ये तो अच्छा ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, ये ऐसे नहीं है। फिर उनकी शान बताई कि ये तो ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो हमने देखना है ना, हमें कितनी नेकी आई है, तो इस क्राइटेरिया पे खुद को थोड़ा सा परख के देखें कि मैं कहां पे खड़ी हुई हूं, ठीक है, मैं कहां पे खड़ी हुई हूं। अल्लाह अकबर। और इनमें देखें अमर बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का दोबारा जिक्र आ गया। यहूदियों यहूदी लोग जो थे ना वो मजाक किया करते थे मुसलमानों का कि इनका नबी तो इनको कजाए हाजत का तरीका भी बताता है कि यानी कैसे बाथरूम यूज करना। तो मुसलमान कहते थे हाँ सिखाता है हमारा नबी तो ये भी बताता है कजाए हाजत के लिए बैठना कैसे है और उसके लिए जो इस्तंजा करना है उसके लिए ढीले कितने यूज करने। हाँ हम हमारा नबी बताता है, फखर से जवाब देते थे। लेकिन देखे ना आज जब दीन बेगाना हो गया, मुसलमान ना घर के रहे ना घाट के, तो आज अपने नबी के तरीके को छोड़ के उसके ऊपर शर्माते हैं और दूसरों के कहीं देखे। जाहिर ही बात है जब अपना कोई तरीका ही नहीं रहेगा फिर दूसरों की चीजें लेंगे ना, फिर कहीं हिंदुओं से चीजें उधार ले ली हैं, कहीं वेस्ट से चीजें उधार ले ली हैं, बस इधर उधर की करके अपनी खाना पूरी की हुई है। तो दीन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि जब तक तुम अल्लाह की किताब से और मेरी सुन्नत से जुड़े रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तो इन दो चीजों को छोड़ दिया हमने और सारा कुछ दुनिया के फनून अलूम सियासियात सब सीख ली, फैशन कुकिंग हर चीज सीख ली, मगर ये चीजें नहीं सीखी, तो फिर क्या हाल हुआ फिर। तो दीन को ये नहीं सोचना कि ये एक कैद है या एक जकड़ है या क्या ये हम किस तरह इन चीजों से बाज रहे या आजकल तो ये हर एक करता है या ये नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा बेहतरीन उसवा है, अल्लाह की फरमा बरदारी में आ जाना ही हमें निजात दिलाएगा ऐसी ऐसी सारी जिल्लतों से पसपाइयों से। अमर बिल मारूफ व नहीं मुनकर ही हमारे लिए निजात है। तो खाने पीने के लिए उम्मत मुस्लिमा भी नहीं जीना, अल्लाह के लिए जीना, ठीक है, अल्लाह के लिए जीना। और ये जो हमें दुआ एक हजरत उमर की है जो इसी आयत में आया ना कि रात की घड़ियों में तिलावत करते हैं वो, तो हजरत उमर की दुआ है तो लंबी दुआ लहमान इस वहशती फी कबरी, तो उसमें है अल्लाहुम्मा ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، کہ اللہ مجھے دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کی توفیق دے، واجعله لي حجتا یا رب العالمین، اللہ اس کو میرے لیے حجت بنا دینا قیامت کے دن۔ तो रातों की घड़ियों में तिलावत करने की अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। वमा यफअलू मिन खैरिन फलन युकफरू, याद रखो जो भी तुम कोई भलाई करोगे ना उसकी नाशुक्री नहीं की जाएगी, नाकदरी नहीं की जाएगी अल्लाह के यहाँ, वो तुम्हें उसका जरूर अजर देगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला जानता है जो तकवे वाले हैं, जो लोग हैं वो अल्लाह को राजी करने के लिए। तकवा का आपको पिछली बार बताया था ना, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, कि जो अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने के लिए कोशिशें करते रहते हैं और उसको राजी करने के लिए नेकी का कोई काम हाथ से जाने नहीं देते, ये भी नेकी कर लूं वो भी नेकी कर लूं, अल्लाह पता नहीं किस चीज से मेरे से खुश हो जाए, क्या पता अल्लाह इससे खुश हो जाए, क्या पता अल्लाह इस नहीं, मैंने अल्लाह को नाराज नहीं करना, तो वो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह को बड़ी अच्छी तरह पता है मुत्तकी कौन है, तो जो भी तुम करोगे ना जाया नहीं जाएगा, अल्लाह उसकी कदरदानी करता है। और इन लोगों के लिए भी है कि वो जो उनकी बुराइयां कर रहे हैं आके कि नहीं ये तो ऐसे बुरे बुरे हैं, नहीं अल्लाह ताला को पता है कि वो क्या खैर करते हैं और अल्लाह उनकी कदरदानी करेगा। इन अल्लदीन कफरू लन तुग्नि अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिन अल्लाहि शैआ, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज नहीं उनको उनकी माल और औलाद बचा सकते, यानी जिन्होंने सिर्फ इस दुनिया को ही सब कुछ समझ के इसमें खर्च किया, और खर्च करने में सिर्फ माल नहीं आता, सलाहियतें भी आती हैं, जिंदगियां भी आती हैं, वक्त भी आता है, जवानियां भी आती हैं, जो इसने यही के लिए लगा दी ना तो वो आखरत में उनको कोई काम नहीं देंगी, कोई काम नहीं आएंगी। यानी अपना माल लगा रहे हैं, बाज लोग क्या चैरिटी वर्क करते हैं कि अपनी तस्वीर खिंचवा लेते हैं, सिलाई मशीन दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, वो जी तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के क्या क्या उसका मतमईन नजर है कि मेरी शोहरत हो और मेरी अखबार में तस्वीरें आए और खबरों के अंदर मुझे दिखाया जाए, कुछ नहीं उनको काम देगा। इसलिए क्योंकि ये माल और औलाद इनको लगाया ही नहीं अल्लाह के लिए ना, देखिए ये एक जिंदगी है जो काफिर की जिंदगी, काफिर की जिंदगी में क्या होता है, मटीरियलिज्म, हर चीज है मादियत, वो मादियत में जीते हैं, मादी तरक्की, मैंने कितना बना लिया, कितना पैसा कमा लिया, मेरी औलाद कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बस यही इनके एसेट्स हैं, उनकी निगाह आखरत में नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि उसके सामने दुनिया होती है, उसने सब कुछ यहीं के लिए किया, तो आखरत में उनके लिए क्या काम आएगी। जैसे मुताम बिन अदी के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, वो बहुत खाने खिलाता था लोगों को, कि क्या उसको आखरत में कुछ मिलेगा, तो आपने फरमाया कि उसने आखरत के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, वो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता था, आखरत के लिए उसने कुछ नहीं किया, उसका ये नहीं था कि मुझे आखरत में इसका कोई अजर मिले, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन लोगों का भी ये नहीं है ना, इन्होंने अपनी औलाद को तैयार किया इसके लिए कि आखरत में हमारे कुछ काम आ जाएगी, हमारे सदका जारिया बने, ना माल को इस नीयत से लगाया, बस इसलिए कमाते रहे कि जो है ना अपना बढ़ाएं आगे से आगे, और वो समझते हैं कि जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये काफिराना लाइफ स्टाइल है। फिर जो इस तरह का ही करेगा, कोई मुसलमान हो के भी ऐसा ही इसी तरह अपने माल और औलाद को खर्च करेगा लगाएगा, तो उसके लिए भी कोई काम नहीं आएगी। लेकिन दुनिया में वो समझते हैं कि वाह हम बहुत ग्रेट हैं, और हमारी क्या बात है, और हम बड़े अकलमंद हैं, देखो कितनी हमने कमाइयां कर दी, और हमारी औलादें कहाँ से कहाँ पहुंच गई, उलाइका साहबुन नार, यही लोग साथी हैं, आके हम फी खालिदुन, इसमें हमेशा रहेंगे, मतलब माई उनफिकुना फी हादिल हयात दुनिया, वो अगर खर्च भी करते हैं ना कुछ इस दुनिया की जिंदगी में, मसलन है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो खर्च करने के अंदर माल भी आ गया, खर्च करने में जवानी भी आ गई, खर्च करने में इंसान की कोई भी चीज जो भी वो खर्च करते हैं, वो उनमें इनको कुछ हासिल इसलिए नहीं होगा वहां पे भी जाके, और उसकी मिसाल यहाँ पे दी गई, इसलिए नहीं हासिल होगा क्योंकि इन्होंने अल्लाह के लिए नहीं कुछ किया, सब कुछ यहीं पे लगाया है, या इन्वेस्टमेंट इनकी सारी की सारी दुनिया में थी। तो इनकी मिसाल कैसी है, कमा तलीरी है, जैसे हवा है, फीहा इस फीहा सिर्रुन, इसमें सख्त सर्दी है, यानी इतनी ठंडी हवा, और आपको पता है जब ठंडी यख हवा जो होती है ना, जैसे यहाँ पे भी जब सर्दियों में कभी ठंडी यख हवा चलती है, तो जैसे सारे घास पीली और इस तरह से हो जाता है, जो सख्त सर्दी वाली हवा होती है वो खेतियों को भी बर्बाद कर देती है, खड़ी फसल को तबाह कर देती है। तो इनकी मिसाल ऐसी है जैसे सख्त सर्द हवा चली, असाबत हर सा कौमिन, वो पहुंचती है खेती को एक कौम की, जलमू जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहम अपने नफ्सों पर, फअहलकत हु, तो वो उस खेती को तबाह करके रख देती। ये इनका हाल है कि जैसे आंधी है सख्त ठंडी, वो खेती को उजाड़ देती है, तो इनकी भी खड़ी फसल थी जिसके ऊपर ऐसी आंधी चली जिसने उसको तबाह हो बर्बाद कर दिया। ये किसकी मिसाल है, जब कोई काफिर है मुशरिक है वो, या अल्लाह रसूल का नाफरमान है, या वो ऐसा है जिसको कोई ईमान नहीं है, जिसने आखरत में कुछ नहीं उसको चाहिए, बस उसका सारा कुछ दुनिया में, यही कि उसकी इन्वेस्टमेंट है, यही के लिए वो खर्च करता है, तो वो ऐसे ही है कि उसने बड़ा कुछ माल कमा लिया, बड़ा कुछ उसकी औलाद बड़ी बड़ी ओहदों पे पहुंच गई, सब कुछ है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सख्त सर्द हवा चली और सारी खेती बर्बाद हो गई, यानी मौत आई और सब कुछ खत्म हो गया, सब जीरो हो गया। मोमिन के लिए तो मौत के बाद भी सदका जारी है ना, उसका माल और उसकी औलाद भी, इसके लिए कुछ भी खर्च करना, या कोई उसने सलाहियत खर्च की है, या उसने अपनी जिंदगी लगाई, तो मोमिन के लिए तो सदका जारी है, उसको तो आगे भी अजर मिलता रहे, इसके लिए देखें जो भी वो खर्च करे, मतलब मा युनफिकूना, उसके जो भी उसने खर्च किया, वो माल है या कुछ भी उसने खर्च किया, सब खत्म हो गया, इसलिए कि वो उसकी जिंदगी क्या थी, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो बस, वो फिक्र की बात नहीं है। तो फिर सूरह कहफ के एंड में आता है ना, आप एंड उसका पढ़िएगा, उसमें बताया गया असल खसारा पाने वाले कौन है, इनकी जिंदगी की सारी मेहनत बस यहीं पे लगी और जाया हो गई, और वो समझते रहे वो बड़े सियाने हैं, वो बड़े अकलमंद हैं, वो सब जाया, आमिलतुन्नासिबा सूरह वाशिया में आता है ना, मेहनत कर करके थके हुए होंगे लेकिन उस दिन आग में जाएंगे, क्योंकि तो इंसान ये नहीं समझता कि जो जब वो यहीं के लिए सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, तो एक मौत का झटका आना है और मल्टीप्लाई विद जीरो हो जाना, और इसका रिजल्ट जीरो हो जाना, जायदादें हैं उसकी, उसने कोई प्रॉपर्टियां ऐसी बनाई हुई हैं, उसके कोई वेकेशन होम्स हैं, उसके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं, होटल हैं, फलाना है, और वो इस पे बड़ा फखर करता है, देखो मैंने कितना कमा लिया, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। उस दिन इंसान कहेगा, हसरतें होंगी उसको, मेरा माल तो मेरे कोई काम नहीं आया। सूरह हाक्का में है ना, मेरा मेरा वो जो चुदराहट थी मेरी, वो खसा पे खत्म हो गई। तो ये जो इंसान याद नहीं रखता ना कि या अय्युहल इंसान, अल्लाह ने याद कराया तुम्हें, तुम याद रखो या अय्युहल इंसान इन्नका कैदिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। तुम याद रखना है इंसान, ये जो तुम चल रहे हो ना अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हो, ये इसने एंड होना है अल्लाह के पास, और सामने अल्लाह होगा, उससे मुलाकात हो जानी। ये तुम चलते जा रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप, तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता ये सफर चलता जा रहा है ना, तुम सोच रहे हो मैं अपनी बर्थडे करूं, क्योंकि मैं बहुत जबरदस्त अब 50 साल की, 60 साल की, 70 80 साल की हो गई हूँ, तो मैं अब अपनी बर्थडे करूँ। ये तो जो तुम्हारा सफर चल रहा है, ये तो अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा है, ये तो तुम्हें लेके जाता जा रहा है, तुम इसको रोक नहीं सकते। तुम चले हुए हो ऐ इंसान, तुम भूले हुए हो कि तुम चल रहे हो, जब तुम्हारा सफर खत्म होना ना तो सामने अल्लाह होगा, उससे मुलाकात होनी। तो लिहाजा जो तुम बना रहे हो इस दुनिया में, और तुम ये सोच रहे हो कि ये मैं बड़ा कुछ बना रहा हूँ, और ये सिर्फ इस दुनिया के लिए अगर कर रहे हो, कुछ भी नहीं हासिल होना। जो लोग यही यही माइंडसेट रखते हैं, चाहे वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, इसी माइंडसेट से वो भी जीते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे मुसलमान इस सेम माइंडसेट के साथ हैं, तो उनके लिए भी कुछ फायदा नहीं है, उनके लिए भी ऐसे ही होगा जैसे मौत आई तो सारा कुछ उनका खत्म हो गया। इसलिए कि सारी निमाइशी चीजें थी ना, सारी जहरी आमाल थे, ऊपर ऊपर के थे, ना तो आखरत के लिए कुछ था, ना उसके लिए कोई जज्बा था कि वो मुझे कुछ मिले। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, दुनिया मोमिन के लिए क्या है, कैद खाना है। कैद खाना जैसे जेल होती है, अब कैदी जो जेल में होता है वो क्या करता है, वो हमेशा किधर सोच रहा होता है कि जब मैं रिहा होऊंगा तो ऐसे होगा, जब मैं रिहा होऊंगा तो ये करूंगा। वो यहाँ के लिए नहीं सोच रहा होता कि मैं यहाँ पे मजा कर लूँ, यहाँ पे मुझे आरामदेह बिस्तर मिल जाए, यहाँ पे मेरी ये डेकोरेशन हो, यहाँ पे मुझे फन हो, एंटरटेनमेंट। वो हमेशा बाहर के लिए सोचता रहता है ना, उसकी सोच हमेशा होती है कि मैं रिहा होके ऐसा करूंगा। मोमिन के लिए रिहाई जन्नत है, आखरत है। वो हर काम वहां के लिए सोचता है, मैं वहां मैं निकलूंगा तो क्या होगा, मैं वहां पे ये अजर पाऊंगा, मैं वहां पे यही, तो उसको फिर ये सारी हूं ना फिर खैरात ऐसे ही नहीं करता, यही फिर उसको नेकियों में दौड़ाती है ये चीज, समझ आई बात। तो अदरवाइज ये चीज ना हुई ना कि आखरत में मुझे ये मिलना है, और मैंने उसके लिए करना है, और मैंने उसके लिए मेहनत करनी है, और कुछ लगाना है, और दौड़ धूप करनी, ये जज्बा ना हुआ तो सारा बस एक सर्द हवा की देर आई और सारी खेती जल के खत्म हो जानी है, कुछ भी नहीं रहना फिर, ठीक है, हबा मंथूरा हो जाएगी। वमा ज़ालमहुमुल्लाहु वलाकिन अन्फुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ने तो नहीं उनके ऊपर जुल्म किया कि उनकी नेकियों को जाया करते, उन्होंने की ही नहीं थी आखरत के लिए, तो जाया ही जब सारा कुछ उन्होंने यहीं के लिए किया था, यहीं के लिए जमा किया, यहीं के लिए खर्च किया, अपनी वाह वाह कराने के लिए कुछ किया, तब तो अल्लाह ने तो जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप पे खुद जुल्म किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम, ऐ ईमान वालो तुम दिली दोस्त ना बनाओ अपने सिवा किसी को। असल में उस वक्त में जो मुसलमान थे, जाहिर है ये यहूदियों के साथ रह रहे थे, उनके साथ इनके बिजनेस टर्म्स भी थे, हलीफ होने के भी उनके साथ इनके थे ताल्लुकात, उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स पे ये रोड रहते थे, तो उनके साथ मेलजोल भी होता था, और उनके साथ जाहिर है उठते बैठते भी थे। अल्लाह ताला ने फरमाया उनको अपना भेदी ना बनाना, उनको अपना राजदान ना बनाना। क्यों? ला या अलूना कुम खबालन, वो नहीं कमी करेंगे किसी खराबी की तुम्हें, वद्दू माने तुम, वो दिल से चाहते हैं कि तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ, किसी मुसीबत में पड़ जाओ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के सिवा किसी की को सोहबत ना देना, किसी के साथ वो ना रखना दोस्ती, और तुम्हारा खाना मुत्तकी खाएं, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं, यानी जब तुम कंपनी में किसकी रहो, नेक लोगों की। हज़रत उमर से किसी ने कहा कि फलां बड़ा अच्छा लिखने वाला है, तो आप उसको अपना सेक्रेटरी बना ले, मुहर्रर रख ले। तो फरमाया ये तो मतलब ये है कि मैं उसको बिताना रख लूं। बिताना का मतलब यहाँ पे ये भी है, राजदान, यानी जब आप किसी को ओहदा दें, हकूमती ओहदा। इसी से उलमा ने ये फतवा दिया है कि गैर मुस्लिम को मुसलमान मुमलिकत में बड़े ओहदे ना दिया जाए। मसलन वो जरनैल बना दिया, सदर बना दिया, वजीर आजम बना दिया, कि गैर मुस्लिम को आप अपने राज ना दो। जाहिर है जब आप उसको ओहदा देंगे तो आप अपने राज उसको शेयर करेंगे, राज देंगे। इसी वजह से इससे मना किया गया कि कुरान कहता है कि नहीं उनको बिताना बनाओ। हाँ, और छोटे मोटे जितने भी प्रोफेशंस हैं वो उनमें चले जाएं, लेकिन बड़ा है कि ऐसा कोई ओहदा जिसके अंदर, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे हजरत उमर को कहा गया कि उसको सेक्रेटरी रख लो, उन्होंने कहा नहीं। कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिम, तहकीक जाहिर हो गई दुश्मनी उनके मुंहों से। वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, और जो हसद की आग इनके सीनों में जल रही है वो तो इससे बहुत ज्यादा है। आप देखें उस वक्त में भी कुछ दुश्मनियां तो इनकी सामने आ गई कि इन्होंने जैसे मुसलमानों के खिलाफ यहूद ने प्रोपोगेंडास किए, जैसे तहवील किबला के वक्त किया, जैसे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवन कत्ल करने की भी कोशिश की। तो ये जो इनकी जाहिर हो गई वो तो हुई, जो इनके सीनों में है वो तो इससे बहुत बड़ी है। इसीलिए तो ये खैबर पे भी चले गए थे, तो वहां पे भी चैन से नहीं बैठे थे। हर वक्त मुशरिकीन ने मक्का को कोई ना कोई वो करते रहते थे कि किसी तरह वो हमले के कर दें, और फिर अहज़ाब में आए भी थे ये। कद बैयना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताकिलून, तहकीक बयान कर दी है हमने तुम्हारे लिए आयतें अगर तुम कुछ अकल रखते हो। अगर तुम्हें कुछ अकल हो तो तुम समझो इस बात को कि वो तो तुम्हारे लिए दिल के अंदर इतना बुग्ज रखती हैं, तुम उनको बिताना कैसे बना सकते हो। यानी उनके साथ वैसे आप उनको दावत दें दीन की, आप उनके साथ हमदर्दी भी कर सकते हैं, उनके साथ खैरख्वाही भी करेंगे तो उनकी दावत देंगे, आपके वो हमसाए हैं उनके साथ अच्छे अखलाक से मिले, आप कहीं डॉक्टर हैं, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, आपके सामने ऐसा मरीज आ जाता है आप उसको अच्छी तरह देखें, लेकिन आप अपने राज ना दें उनको, अपने राज ना दें। क्योंकि आप अपने राज देंगे तो फिर समझ लें कि आपने उनको अपने घर का भेदी बना लिया, और फिर वो तो आपकी खैरख्वाही नहीं कर सकते। हाँ तुम मुलाई तो हिबूना हूँ वाला यो हिबूना हूँ, तुम ऐसे लोग हो कि तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, वो तो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। तुम उनसे मोहब्बत रखते हो क्योंकि उस वक्त के उसमें देखें तो मुसलमान आम मेलजुल करते थे ना, वो तो उसी तरह मिलते थे जैसे पहले मिलते थे, तो उन्होंने तो कुछ नहीं अपना। तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, एक ये भी था कि मुसलमान उनसे खैर ख्वाही रखते थे कि ये मुसलमान हो जाए, लेकिन वो नहीं उनसे खैर ख्वाही रखते थे। मुसलमान ये चाहते थे कि ये अबदी हमेशा की तकलीफ से बच जाए, एक मुसीबत में गिरफ्तार होने से बच जाए, लेकिन वो मुसलमानों के लिए तो नहीं ऐसा चाहते थे। ये अपने राज उनको बताते थे, वो अपने राज नहीं बताते थे। तो तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, वो नहीं मोहब्बत रखते। वो तो सहाबा कराम एक डिफरेंट तरह से मोहब्बत रखते थे, खैर ख्वाही की। आज हमने मोहब्बतें कैसी की हैं? आज तो हमने मोहब्बतें ये की हैं कि हर चीज में हमने उनको कॉपी करना है, हमें इतनी उनसे मोहब्बत है, उनसे मशवरा करना है, उनको देखना है हर चीज में, किसकी तरफ देखना है कि हमने क्या पहनना है, हमने कैसे खाना है, हमने क्या किन प्रोफेशंस में जाना है, हमने किस तरह से दिखना है, हमने किस तरह से बोलना है, हमारे एक-एक तरीके को देखें। जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसी का कॉपी करता है ना। तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, आपकी वो ईद नहीं मनाते, हमारे आज मुसलमान क्रिसमस मनाने शुरू हो गए, वो अकीका नहीं करते, हम बर्थडेज करते हैं उनकी। आप हर चीज में देख ले, वो तो हमारी चीजों को नहीं अपनाते, हम उनकी चीजों को अपना रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम उनसे मोहब्बत रखते, वो तो नहीं तुमसे मोहब्बत रखते। हालांकि वह तुमिनूना बिल किताबे कुल्ले, तुम तो सारी ही किताबों पर ईमान रखते हो, और इसके अंदर एक हिडन मैसेज ये है, वो तो सारी किताबों पर ईमान नहीं रखते, वो तो कुरान को नहीं मानते। तुम कहते हो मैं हम तो रात को मानते, इंजील को मानते, वो तो नहीं आपके इस तरह मानते। तो तुम तो खुले दिल के हो, वो देखो तुम्हारे से इतना बोझ रखते हैं कि वो कभी तुम्हारे कुरान को नहीं मानेंगे, कभी उनको हमेशा ये होगा कि इनकी शरीयत ही ना नाफिज हो जाए, उनको ये हमेशा डर रहता। तो मुसलमान जो है वो कि आज की दुनिया के अंदर मुसलमान क्या कर रहा है जबकि कुरान क्या बताता है, एक-एक चीज के अंदर देख ले। वो कभी आपका हिजाब नहीं लेंगे, वो कभी आपके अबाए नहीं पहनेंगे, आप उनके जैसे ड्रेसअप होने को फखर समझते हैं, और हर चीज में देख लें, उनके हर तरीके को अपनाने में देख लें, चाहे वो कोई फेस्टिवल है, कोई कल्चरल चीज है उनकी, चाहे कुछ भी है, मगर हमें पसंद क्या आता है कि हम वैसे करें जैसे वो करते हैं, वो लेकिन वैसे नहीं करते जैसे हम करते हैं। हुकुम कालू आमन्ना, वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम मान गए मान गए, हम भी तुम्हें मानते हैं, हम भी खुदा को मानते हैं, हम भी इसको मानते हैं। वाइदा खलो अदु अलैकुम अमिला मिल गईज, जब वो तन्हा होते हैं तो वो काटते हैं अपनी उंगलियों को गुस्से से, कि ये गजब से, कि ये इतना उनको तुम्हारे पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों नबी इनके पास आ गया, ये दीन इनको क्यों मिल गया, ये क्यों बेस्ट उम्मत बन गए। जाहिर है सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसी को आएगा जिस को किसी ओहदे से हटा के उसकी जगह दूसरे को रखा गया, सबसे ज्यादा उसको आता है ना, ये मेरी पोजीशन इसने ले ली है। तो उनके अंदर बहुत गुस्सा था यहूद के अंदर। कुल मूतू भी गई थी को, तुमने अब उनके बराबर फिर उनका ऊपर गुस्सा करके और उनके साथ नहीं लड़ना, फिर तुम कहोगे ठीक है तुम फिर अपने गुस्से की आग के अंदर खुद ही जलो, जाओ फिर मरते रहो अपने गुस्से के अंदर। इन अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो सीनों के अंदर की बातों को भी जानता है, उसको पता है कि किसने दिल में क्या छुपाया हुआ है, कितना बोझ है, कितना गुस्सा है उसके दिल में दूसरे के लिए, अल्लाह को सब पता है। तो उनकी हकीकत खोल दी, मैंने आपको बताया था ना आयत 120 तक मुसलमानों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है माशरे में कैसे रहना है। देखो ये इन लोगों से अब बच के रहना, वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें भी करेंगे, तुम्हें अजियत भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें तरह तरह से सताने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने किस तरह से चलना है ये बता दिया गया। और आज हमने बिल्कुल उलट उलट बिल्कुल रविश इख्तियार की हुई है, हम बिल्कुल उलट चलते हैं। फिर फरमाया इन तमसस्कुम, फिर उनकी शर की और बात बताई गई, अगर पहुंचती है तुमको कोई भलाई तसुहुम, तो उनको बहुत बुरी लगती है, उनको अच्छी नहीं लगती कि तुम्हें कोई भलाई मिल रही है। और वह इन तुसिबकुम सय्यातुन, और अगर तुम्हें पहुंचती है कोई, तुमको कोई भलाई बुराई पहुंचती है या फराहू भी है, तो वो बड़े ही खुश होते हैं इससे, इससे बहुत उनको खुशी मिलती है। अब देखें आप यहां पे उनके अंदर के कीने को बता दिया गया। याद रखिए इंसान का दोस्त वही होता है जो उसकी खुशी के अंदर खुश हो और उसके गम के अंदर वो गमगीन हो, ठीक है। मगर इनका तरीका क्या था, ये मुसलमानों की जो उनको जरा सी तम सस कुम आया, ठीक है, तो सिब कुम नहीं आया, जरा सी भी मुसलमान को कोई भलाई पहुंच जाए तो इनको बड़ी बुरी लगती है, बड़ी तकलीफ होती है कि इनको क्यों ये मिल गई। और तो सिब कुम पहुंचती है तुमको कोई बुराई, यानी कोई गहरा जख्म आ जाए, कोई बड़ी बुराई पहुंच जाए, तो फिर उनको बड़ी खुशी होती है कि ये देखो अच्छा हुआ इनके साथ ये हुआ। यही एक मयार है आपको देखने का कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। लेकिन जितना दुख हो रहा था ये बात पढ़ के कि ये गैर मुस्लिमों की बताई गई कि वो यहूदी इतना ज्यादा बोझ रखते हैं मुसलमानों के साथ, मगर दुख मुझे इस बात का था कि आज मुसलमानों के अपने अंदर ऐसे लोग हैं जो दूसरे मुसलमानों के साथ ये ताल्लुक रखते हैं कि दूसरे को कोई भलाई पहुंच जाए, छुए भी भलाई उनको बुरी लगती है। इसका बच्चे को कामयाबी क्यों मिल गई, इसका अच्छी जगह रिश्ता क्यों होगा, उसकी प्रोमोशन क्यों हो गई, इन्होंने बड़ा घर क्यों ले लिया, इन्होंने अच्छी गाड़ी क्यों खरीद ली, हाय इनके बच्चे तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर उनके दिल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मर गए हैं। और अगर बुराई किसी को पहुंचे तो बड़े खुश होते, अच्छा हुआ ऐसा ही होना था इनके साथ, फिर खुशी करते हैं। यानी हमारे जवाल की कोई इंतहा है, गिरने की कोई इंतहा है, जब ऐसे जज्बात किसी के दिल में भी किसी के लिए पैदा हों कि किसी की तकलीफ अच्छी लगे, कि अंदर अंदर खुशी हो रही है ऊपर ऊपर अफसोस कर रहे हैं, या किसी को भलाई पहुंचे तो अंदर दिल जल के कोड़ के खत्म हो गया, तो सोच लें कि ये फिर किन की क्वालिटी थी वो जो मग़दूबी अलैहिम थे। वह इन तस्वीरों, अब तुमने क्या करना है, अब उनके लेवल पे उतर आओगे जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करने लगोगे, या मार धाड़ के लिए खड़े हो जाओगे? नहीं, जब ऐसे लोग होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारा तरीका क्या होता है, बस फिर हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब पता चल गया कि हाँ वो तो जी हमारी बुराई पे खुश होते हैं, हमारी हमें को भलाई, और बाज दफा रिश्तेदारों में ही होते हैं ऐसे लोग, भलाई हमारी इनको बुरी लगती है, तो फिर अब हम उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर उनसे कता ताल्लुके करते हैं, फिर उनकी बुराइयां करते हैं। नहीं, वह इन तस्बीरू व तत्तकू ला यदुरुकुम कैदुहुम शैया। अगर तुम सबर करते रहोगे ना, सबर का मतलब क्या है यहाँ पे, सबर यानी इंतजार अच्छे दिनों का। अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुराई पहुंची है तो कोई नहीं, अच्छे दिन आ जाएंगे। और सबर क्या होता है, हालात के बदलने का। और सबर किस में, कि मैंने अपने दीन पे कायम रहना, मैंने नहीं छोड़ना, और वह तत्तकू और अल्लाह से डरते रहो कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास तुम्हारे अंदर रहे, तो फिर क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये उससे बेहतर है कि आप किसी के खिलाफ खड़े होके और फिर लड़े बाजू चढ़ा के, या उसके साथ कोई और नेगेटिव और कोई चीजें करने की कोशिश करें, उसके जवाब में कुछ अपनी सोचने शुरू कर दें, तदबीरें, तो उससे बेहतर है आप सब्र करें और तकवा इख्तियार करें। तो क्या होगा, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनकी चालें आपको कोई नुकसान नहीं देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूं, अगर लोग उस पर अमल शुरू कर दें तो उनके दीन और दुनिया के लिए वही काफी है, यानी और कोई भी नहीं चीज, उनके दीन और दुनिया के लिए वही काफी है। इतनी प्यारी वो आयत है और इतनी इंपॉर्टेंट आयत है। और वो क्या है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए जरूर कोई रास्ता निकाल देता है। सूरह तलाक की आयत है ये, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के बारे में देखे अहमियत उसकी बता दी, कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे ना, तो बस फिर अल्लाह तुम्हारे लिए कोई एग्जिट निकालेगा, अल्लाह तुम्हें उस मुश्किल से निकाल लेगा। तुमने बस ये याद रखना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज, तकवा का याद है ना, कि जो पिछली दफा बताया था, मैंने नहीं कोई गलत काम करना जिससे अल्लाह नाराज होता, और मैं नेकी करूंगी क्योंकि अल्लाह उससे राजी होता है, चाहे मुझे कोई भी रोकता हो। तो ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो फिर वो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकते, अदरवाइज उनका ये तरीका रहा है। अब सूरह आले इमरान के आखिर में भी अल्लाह ताला ने फरमाया यही बात को, लतुब्लगुन्ना फी अम्वालिकुम वा अन्फुसिकुम वला तस्मउन्ना मिन अल्लदीना उतुल किताब मिन कब्लिकुम व मिन अल्लदीना अशरकु अदन कथीरा, तुम जरूर आजमाए जाओगे तुम्हारे अपने मालों से और जानों से, और तुम जरूर सुनोगे इन अहले किताब से और मुशरिकीन से अजियत वाली बातें तुम्हें जरूर पहुंचेंगी, जरूर, ठीक है, ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन वहां पे भी क्या कहा गया, वह इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सबर करोगे ना और तकवा इख्तियार करोगे, फ इन दालिक मिन आज़मिल उमूर, ये बड़े हिम्मत के कामों में से है, सारे नहीं कर पाते, लेकिन ये करोगे कोई तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। इन अल्लाह बीमा यामलून मुहीत, जो भी वो अमल कर रहे हैं वो ऐसे ना समझो कि किसी को पता ही नहीं है, अल्लाह घेरने वाला है वो, उनको अल्लाह ने छुट्टी नहीं दी भी बिल्कुल, अल्लाह ने घेरा हुआ है, और अल्लाह ताला एक वक्त तक किसी को मोहलत देता है। तो इसलिए तुम ये ना समझना कि तुम अकेले ही हो, आए हमारा अब कौन वाली वारिस, आए ये तो हमारे साथ इतनी साजिशें करते हैं, आए ये तो हमारी भलाई को देख के जलते हैं कुड़ते हैं और हमारी मुसीबत पहुंचती है, तो देखो इनको कितनी खुशी हो रही है। मुल्कों में भी ऐसे होता है, दूसरे मुल्क को तकलीफ हो रही हो तो वो खुशियां मना रहे होते हैं, ठीक है, दूसरी कौम के साथ इतनी दुश्मनी होती है उनको, और आज भी मुसलमानों के साथ ऐसा है, कई कौमों को ऐसा है कि वो मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आती है तो बड़े खुश होते हैं, और उनको कामयाबी मिल जाए, वो उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कहीं दुनिया के अंदर उनको कोई पजीराई मिल जाए, या कहीं उनकी तरक्की की कोई बात हो जाए, तो जल कोड़ के खत्म हो जाते हैं, उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो नहीं, तुमने कुछ नहीं करना, तुम सबर और तकवा, कि तुम्हारे साथ अल्लाह है ना, अल्लाह खुद ही मोहित है, घेरने वाला है उनकी जो भी उनकी चालें हैं उस सबको। ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी है, ये ओवर द ग्लोब जितनी दुनिया के अंदर भी चीजें होती हैं उसके अंदर भी हमें रहनुमाई मिलती है कि क्या है, लेकिन उनके रवैये बता दिए कि उनके ऐसे ही रवैये रहेंगे, अब उसके साथ ही आपको रहना है, वो इसी तरह रहेंगे, ये कोई नई बातें नहीं है, ये पहले की बातें हैं। तो लेकिन आपने चालें नहीं चलनी उनके जवाब में भी, कि आप भी उसी तरह हो जाओ, आप अपनी इसलाह करो, अपने अंदर झांको, आप सबर करो और तकवा की रफीश आपने नहीं छोड़नी है, कि वो ऐसे करेंगे तो हम भी उनके लेवल पे आएंगे, ये नहीं करना, ठीक है, और उनकी चालों से इसका मतलब डरना नहीं है, क्योंकि जब आपको ये ईमान है कि अल्लाह बिमा यअमलूना मुहीत, तो फिर इंसान को स्ट्रेंथ आ जाती है कि कोई नहीं, अल्लाह ने उनके सारे जो वो कर रहे हैं उसको घेरने वाला अल्लाह ताला, तो मुझे किस बात का फिर डर। अल्लाह ताला इन आयात को समझने की और इन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط